الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تین رکوع یہاں پہ کمپلیٹ ہوتے ہیں سورہ بقرہ کے، چوتھا رکوع جو ہے یہ پورا کا پورا رکوع آدم اور ابلیس والا جو واقعہ ہے اس کو کور کر رہا ہے۔ یہ واقعہ قرآن کے اندر اس کو انکلوڈ کرتے ہوئے 7 دفعہ دہرایا گیا ہے، 7 ٹائمز۔ اب ایک کتاب جس نے ہمیشہ کے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور جس کے اندر ایک ایک آیت جو ہے وہ ہر زمانے کی ہدایت کے لیے ہوگی، اس کے اندر ایک واقعہ 7 ٹائمز اگر دہرایا ہوا ہے، 7 ٹائمز رپیٹ ہوا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یقیناً یہ کوئی بہت ہی اہم بات ہے۔ اور بھی واقعات ہیں قرآن کے اندر جو رپیٹ ہوئے ہیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے اوپر کوہ طور کے پاس آواز آئی، اس طرح کے واقعات اور بھی، لیکن اس اتنی زیادہ فریکوینسی اور کسی کی بھی نہیں ہے۔ 7 ٹائم اس کو رپیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے، ہر دفعہ جو بات آئی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ اضافہ ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہے جو دوسرے کے اندر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ، اور جب، کالا، کہا، رب کا، آپ کے رب نے، بالملائکت، فرشتوں کے لیے، فرشتوں سے کہا، انی، بے شک میں، جائلون، بنانے والا ہوں، اپوائنٹ کرنے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک خلیفہ، ایک نائب، ایک وائسرنٹ بنانے والا ہوں، میں اپوائنٹ کرنے والا ہوں۔ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں یہ وہ زمانہ ہے جب آدم نہیں پیدا ہوئے تھے، ابھی انسان تھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں ایک اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپوائنٹ کرنے والا ہوں۔ اب زمین میں بنانے والا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان پیدا ہو چکے تھے، زمین و آسمان تھے، موجود تھے، اس کے اندر میں جانا اب اپنا ایک خلیفہ اپوائنٹ کروں گا۔ تو یہ تخلیق کا سیکوینس ہے، یہ بھی امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ زمین و آسمان جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کے بعد جو باقی مخلوق ہے وہ آف کورس اس کے بعد وجود میں آئی، انسان سب سے آخر میں وجود میں آیا ہے۔ جنات جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر کے اندر فرمایا ہے بل جان خلق نہ ہو من قبل من نار سموم، جنات کو میں نے آدم سے پہلے تخلیق کیا تھا سلگتی ہوئی آگ سے۔ جنات بھی پہلے پیدا ہوئے، فرشتے موجود تھے، زمین و آسمان تھے، تبھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زمین میں اب میں نے یہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی مخلوق ہیں، میں انسان سب سے آخر میں جا کے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کلائمیکس ہے، تبھی تو اس کو کہا گیا کہ یہ اشرف المخلوقات کہا گیا، اسے سب سے زیادہ ہائیسٹ جو ہے نا، یہ ریسپیکٹڈ، سب سے ہائیسٹ ویلیو کے اوپر اس کو رکھا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک زمین میں اب اپنا ایک خلیفہ، ایک نائب اپنا اپوائنٹ کرنے والا ہوں۔ اس کو آگے فردر انڈرسٹینڈ کرنے سے پہلے یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ خلیفہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں زمین میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ جو ہے وہ نائب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ملک غلام مرزا جو ہیں انہوں نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ بادشاہ جو ہے اس کا اپوائنٹ کیا ہوا ایک نائب جو اس کی بتائی بھی ڈیوٹی کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے ایک جگہ کے اوپر۔ بادشاہ جس طرح اس کو حکم دیتا ہے وہ اسی طرح پرفارم کرے گا، لیکن جہاں پہ بادشاہ اس کو کوئی حکم نہیں دیتا وہاں پہ وہ خود با اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور اس کو ایکسپلین کیا ہے مولانا مودودی نے اس طرح کہ ہم انگریزوں کے جس طرح ہم غلام تھے، تو ہمارے انڈیا کے اندر کنگ تو ادھر ہوتا تھا، انگلینڈ میں ہوتا تھا، انڈیا کے اندر یہاں پہ کیا ہوتا تھا، وائس رائے ہوتا تھا جو کہ کنگ کا اپوائنٹ کیا ہوا ہوتا تھا، وائس رائے آن بہاف آف دا کنگ، وہ یہاں پہ رول کر رہا ہوتا تھا، کنگ جیسے کہتا تھا ویسے کرتا تھا، باقی جہاں پہ کنگ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا وہاں پہ وہ با اختیار تھا، اس کے پاس رائٹس تھے، وہ جو چاہتا کر سکتا تھا، ڈے ٹو ڈے افیئرز وہ اپنے خود ہی مینیج کرے، لیکن وہ کام جو کنگ نے اس کو کہہ دیا کہ اس کو یوں نہیں یوں کرنا ہے، تو تب اس نے اسی طرح ہی کرنا ہے اسے۔ یا ایک خاص حد تھی اس کی وائس رائے کی کہ جہاں پہ کنگ نے کچھ نہیں کہا اسے، تو وہاں پہ وہ یہ نہیں کہ بالکل آزاد ہے اپنے جو مرضی چاہے کرے، وہاں پہ بھی وہ باؤنڈ تھا کنگ کی مرضی کے اوپر۔ مثال کے طور پہ انڈیا کے اندر कांग्रेस मुस्लिम लीग इनकी मुख्तलिफ डिमांड्स आती थी कि हमें ये हकूक दें, हमने ये आइन के अंदर ये चेंजेस किए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का किया जाए, उन सब का अप्रूवल लिया जाता था वहाँ से। वहाँ से यस आता था तो यस होता था। तो बिल्कुल इसी तरह ही अल्लाह ताला का खलीफा क्या है कि अल्लाह ताला ने अपनी जगह अपना नायब बना के अपॉइंट किया और इसको उसी तरह इख्तियार दिए। जहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म आ गया, अल्लाह ताला कह दें कि तुमने यूं करना है यूं नहीं करना, ये हलाल है ये हराम है, वो तो फॉलो करना है। जहाँ पे अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म नहीं आया, वो चीज़ फिका की टर्म्स में मुबाह कहलाती है, परमिसिबल है, जायज़ है वो। जिस तरह मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने खाने पीने की जो चीज़ें हैं, अशिया हैं, उनके अंदर कई चीज़ों का जिक्र कुरान में किया हुआ है कि ये हलाल है ये हराम है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हदीस के अंदर और वजाहत हो गई है। जैसे मिसाल के तौर पे कुरान के अंदर ये तो जिक्र है कि सूअर का गोश्त हराम है, मुर्दार खाना हराम है, खून हराम है, गैर अल्लाह का नाम लिया हुआ है वो हराम है। कुरान के अंदर इस हद तक वजाहत हो गई, हदीस के अंदर इसको और बढ़ा के गधे का गोश्त हराम है, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जिनके नुकीले दांत होते हैं, जिसमें कुत्ता भी आ गया, शेर आ गया, इस तरह के जितने भी फॉक्स आ गई, जितने भी जानवर होते हैं, बिल्ली हो गई, वो उसमें शामिल हैं। इनकी वजाहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई है। गधे का गोश्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हराम है, कुरान में नहीं है। तो ये हलाल हराम के दायरे हैं। बाकी इससे हट के और ज़्यादा डिटेल में पूछना कि अच्छा बिल फर्ज ये कि ठीक है शराब तो हराम है और ये आब जमजम का तो बहुत स्वाब होता है, शहद के बारे में बहुत जिक्र किया है अल्लाह ताला कुरान में, पेप्सी कोला के बारे में क्या है? तो पेप्सी कोला जो है वो मुबाह में है, पी लें उसे, जायज़ है, उसको हराम तो नहीं है वो। इसने जिन क्वालिटीज़ वाले जानवरों का जिक्र कर दिया अल्लाह ताला ने, वो तो हराम हो गए। लेकिन जिनका जिक्र नहीं किया, अब जैसे ख़ास तौर पर सी लाइफ के अंदर तो इतना इस कदर जानवर हैं, इस कदर मखलूक है वहाँ पर कि वहाँ तो आप सिर्फ कैटेगराइज़ नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि सब मछली है, तो बहुत किस्म की मखलूक है वहाँ पर। स्क्विड क्या चीज़ होती है, स्क्विड की और क्लासिफिकेशन होगी, ईल्स क्या होती हैं वो अलहदा है, शार्क की अलहदा होगी, डॉल्फिन, वेल ये और कैटेगरी को फॉल करती हैं, ये फिश नहीं है। तो कहने का मतलब ये है खलीफा जो अल्लाह ताला ने बनाया है ये इस तरह नहीं इंसान को बनाया कि एक रोबोट की तरह है कि उसको बस जो प्रोग्रामिंग कर दी है उसकी उसने उसी तरह परफॉर्म करते रहना बस, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार दिए हैं उसे और अपना नायब बनाया, अपनी जगह बनाया अल्लाह ताला ने उसे। लेकिन यहाँ पे ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, एक इंसान का नायब बनाए हुए में और अल्लाह ताला ने अगर नायब बनाया, जब इंसान को नायब बनाता है तो उसकी एब्सेंस में होता है वो नायब, कि मैं एब्सेंट हूँ तो वो नायब है मेरा, जब मैं नहीं हूँगा। मिसाल के तौर पे जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चला जाता है तो फिर जो स्पीकर होता है वो सदर का रोल परफॉर्म करता है, जो सेनेट का होता है स्पीकर वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है तब वो। ये वो बात नहीं है, प्रेसिडेंट अब गया पीछे जो मर्जी वो करता रहे, ये वो बात नहीं हो रही। अल्लाह ताला ने जब नायब बनाया तो अल्लाह ताला ऐसा नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला एब्सेंट है, वो बात नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने ज़मीन के जो मामलात है, दुनिया के अंदर जो कुछ भी हो रहा होगा, वो अल्लाह ताला ने उनसे अपने आप को गैब में रखा हुआ है और इंसान को कहे कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने ज़मीन के अंदर इंसाफ तुमने कायम करना है, तुमने जो है ना यहाँ पर अदल करना है। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से ये बताया कि मेरा इरादा ये है कि मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा अपॉइंट करने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने आगे से क्या कहा, कालू, फरिश्तों ने कहा, अतज अलू, क्या आप अपॉइंट करेंगे, फ़ी हा, इसमें ज़मीन में, मैं युफ से तो फ़ी हा, जो कि फसाद मचाएगा इसमें, ज़मीन में तो फसाद होगा इसकी वजह से, जैसे ही आप कोई बाख्तियार मखलूक पैदा करेंगे और उसको इख्तियार देंगे वो तो फिर तबाही मचाएगा, जुल्म करेगा वो, वयस्फिकु, और बहाएगा अद्दिमा, खून बहाएगा उसके अंदर, वनहनु, और हम हैं, नुसब्बिहु, जो कि आपकी तस्बीह बयान कर रहे हैं, बेहमदिका, आपकी हमद के साथ, वनुकद्दिसु लक, और आपकी हम लोग पाकी बयान कर रहे हैं। अल्लाह आपको मतलूब क्या था, इबादत से क्या मतलूब था आपको, कि आपकी बुजुर्गी बयान हो, आपकी बढ़ाई बयान हो, आपकी हमद की जा रही हो, वो हम कह रहे हैं बेस्ट तरीके से कह रहे हैं। फरिश्तों के बारे में आपको बताया था जो शुरू की क्लास थी कि फरिश्ते वो मखलूक हैं कि जिनके पास अपना मर्जी नहीं है, उनके अंदर थकावट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो थक गए होंगे किसी चीज़ से। हम अगर नमाज़ पढ़ना शुरू हों तो हम लोग थोड़ी देर बाद हमारी कॉन्सेंट्रेशन लूज़ हो जाएगी नमाज के अंदर, चाहे स्टार्ट हमने जितना मर्जी उससे किया था, बिलफर्ज हमारी कॉन्सेंट्रेशन शुरू में भी थी, हम थक भी जाएंगे, हम कहेंगे चलो ठीक है बस बहुत हो गया अब और नहीं करना हमने। हमारी जो इबादत है वो वेव्स में आती है, कभी हमारा दिल चाह रहा था, कभी नहीं दिल चाह रहा था। फिर कई चीज़ें होती हैं जो हमारी मेरी अपनी लाइक डिसलाइक उसके ऊपर गालिब आ जाती है कि अल्लाह ताला का तो हुक्म ये था, लेकिन मुझे फिर भी मेरा दिल ये चाहता है कि मुझे ये पसंद है। अल्लाह ताला के हुक्म के बारे में जिस तरह साल के तौर पर म्यूज़िक को नापसंद किया, लेकिन हम लोग म्यूज़िक नहीं छोड़ते, क्यों? हमारी पसंद गालिब आ जाती है उसके ऊपर, हमारी अपनी चॉइस उसके ऊपर गालिब आ जाती है। फरिश्तों का ऐसा मामला नहीं है, फरिश्तों को जिस काम पे अल्लाह ने लगा दिया है वो परफॉर्म करते रहेंगे, उनकी अपनी कोई मर्जी नहीं होगी, उनके बीच में अपनी कोई राय नहीं होगी कि यूँ नहीं यूँ होना चाहिए, फलानी नहीं फलानी चीज़ होनी चाहिए। इस तरह वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ वो रोल परफॉर्म करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, विदाउट एनी इमोशन, विदाउट एनी फीलिंग्स। आपको मकसूद क्या था? अगर यही मकसूद है तो वो तो हम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आगे से कहा, काला इन्नी आलमो माला तालमोन, काला कहा अल्लाह ने, इन्नी बेशक मैं, आलमो जानता हूँ वो, माँ जो ला तालमो जो तुम नहीं जानते। इसके पीछे क्या विजडम है, इसके पीछे क्या हिकमत है, वो मैं बेहतर जानता हूँ, वो तुम नहीं जानते। अब ये फरिश्तों का ये कहना कि यहाँ पे अल्लाह जब इंसान को बाख्तियार आप बनाएंगे, अपने खलीफा को जब आप बाख्तियार बनाएंगे तो वो तो ज़मीन में फसाद मचाएगा और खून बहाएगा, ये बात गलत तो नहीं है। आप ह्यूमन हिस्ट्री उठा के देख लें, अक्सर और बेशतर जो है वो तारीख के अंदर हुआ ही जुल्म है, हमेशा जुल्म हुआ है। इंसान जो है जहाँ पे वो बहुत रहम करने वाला भी है वहाँ पे वो बिल्कुल तिंदे की हद तक भी गिर जाता है, बिल्कुल बारपेरे के एक्सपी इंसान नहीं की हुई है जो किसी और किसी दरिंदे से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। जंगों के जो सिलसिले जितने भी पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें आप, इंसानियत की पूरी तारीख उठा के देख लें आप लोग, कि जिस किस कदर तरीके से जुल्म किया करते थे, जो पकड़ा जाता था अव्वल तो मैसे कर मार दिया, मार के रह दो सबको, जो बंदे हैं उन सबको मार के रह दो, ज़िबा कर दो, ख़त्म कर दो उन्हें, जो बच्चे हैं वो उनको जो जिनमें से जो ठीक है सेहतमंद हैं उनको बचा लो, जो बीमार मजूर हैं उनको भी मार दो, ये माली खामखा बोझ होंगे। बच्चे और बच्चियाँ जो हैं उनको बचा लो, क्यों? क्योंकि बड़े होके ये हमारे ग़ुलाम बनेंगे और वो हमारी कनीज़ें बनेंगी। जो औरतें हैं उनमें भी जो लड़कियां हैं उनको जना पकड़ लो, जो करना करो, रेप करो, जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करो उन्हें, और जो बाकी बूढ़े और वो लोग हैं उनको भी ख़त्म करो, बाकी जानवर मवेशी जो कुछ भी प्रॉपर्टी हड़प की जाए। पूरी तारीख इंसान की जो है ना वो इसी के ऊपर ही सर्कुलेट करती है, इंसान ने हमेशा इसी तरह किया है। फिर इसके अलावा अगर आप अखबार के अंदर वाले सफ़े देखें या जिस तरह के हमारा न्यूज़ चैनल रिपोर्ट कर रहे होते हैं, सोसाइटी जो बाहर कह भी रही है अपने आप को कि हम जो है मुसलमान हैं, अल्लाह रसूल को मानने वाले हैं, हमारी अपनी सोसाइटी के अंदर किस हद तक जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं, कत्ल कितना आम है, एक दूसरे का हक मारना कितना आम है। आपको शायद ही कोई ऐसा दिन नज़र आएगा कि आप किसी दिन जा रहे हो और आपको कोई लोग लड़ते हुए नज़र ना आ रहे हो, एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए नज़र ना आ रहे हो, गालियाँ देते हुए नज़र ना आ रहे हो। जो फरिश्तों का इतराज़ था उस मामले में तो ये बात बिल्कुल ठीक है, वाकई इस तरह ही हुआ है कि इंसान जो है वो तो बिल्कुल ही फसाद मचा रहे हैं। इसकी एक और वजह क्या थी कि फरिश्तों का ये मुशाहिदा क्यों था, उसकी एक वजह ये भी थी कि जिसने आपको अभी आयत सुनाई थी मैंने सूरह हिजर की, कि जिन्नात जो थे वो तो पहले से एग्जिस्ट करते थे और जिन्नात भी एक हद तक जो है वो जिस तरह इंसान है उस तरह वो भी बाख्तियार मखलूक हैं, वो बाउंड नहीं है उस तरह अल्लाह ताला की इबादत के, उनके पास चॉइस है। फरिश्तों के पास चॉइस नहीं है, हमारे पास चॉइस अवेलेबल है। अल्लाह ताला ने दो रास्ते रख दिए हैं, जो अडॉप्ट करना है कर लो। इसी तरह जिन्नात का भी ये मामला है, तो जिस तरह जिन्नात में भी ज़्यादा जो था वो शर ही फैला था उनकी वजह से, इस तरह ही फरिश्तों का भी ये एतराज़ था कि ये तो शर फैलेगा। यहाँ पे एक और चीज़ माइंड में ये रखनी है कि ये भी वाकया है कि अभी आदम को पैदा नहीं किया था तो अल्लाह ताला ने ये जिक्र किया है, जिन्नात मौजूद थे, अभी वो आदम पैदा ही नहीं हुए तो आदम को सजदा करने वाला वाकया भी हुआ ही नहीं, वाकया एग्जिस्ट ही नहीं हुआ। तो इब्लीस भी नहीं था, इब्लीस उस तरह से बागी नहीं था अल्लाह ताला का, मौजूद था बागी नहीं था अल्लाह ताला का, फरमा बदार था। जो फिरिश्तों ने समझा उन्होंने कहा कि हम आपकी बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, तो हम हैं ना मौजूद हैं, आपको एक अलग से खलीफा बनाने की क्या ज़रूरत है, हम आपके हैं, हम आपकी पूरी जो निज़ाम है उसको हम चला रहे हैं। अल्लाह ताला के जो निज़ाम है उसके लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ है, आपको पता है कि जिस तरह फरिश्ते जो हैं वो रिस्क के ऊपर मुकर्रर किया हुआ है मीकाईल को, अल्लाह ताला ने मौत के ऊपर मलकुल मौत जो हैं जिनको हमारे यहाँ रवायतों में कहते हैं इज़राइल, उनका नाम हदीस में कहीं ऐसा नाम जिक्र नहीं हुआ है ना ही कुरान में जिक्र हुआ है, मलकुल मौत ही नाम है उनका सिर्फ, एंजल ऑफ डेथ। कुछ फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पे पहाड़ों पे मुतय्यन किया हुआ है, जिस तरह वो ताइफ वाला वाकया जो हुआ था, तो उसके बाद वो फरिश्ता आया था, वो जिब्रैल नहीं आए थे, वो एक और फरिश्ता आया था, मलिकुल जबल, पहाड़ों का फरिश्ता आया था, और उसने कहा था कि मुझे इन ताइफ की पहाड़ियों के ऊपर अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ है, तो अगर आप हुक्म देते हैं तो मैं ख़त्म करके रख देता हूँ इसको, दोनों पहाड़ों के बीच में ताइफ शहर को ख़त्म करके रख देता हूँ मैं। तो वो जिब्राइली थे, वो पहाड़ों के ऊपर एक ताइफ अल्लाह ताला के अपॉइंट किए हुए फरिश्ते थे। इस तरह अल्लाह ताला ने रहमत के फरिश्ते अलहदा पैदा किए हैं, हफाजत के फरिश्ते अलहदा हैं, अजाब के फरिश्ते अलहदा होंगे। तो ये अल्लाह ताला की वो मखलूक है जो कि अल्लाह ताला के ये जो पूरा ज़मीन व आसमान का निज़ाम है वो चला रही है। जिस तरह मिसाल के तौर पर बहुत तवील हदीस है जिसके अंदर क़यामत का मंजर जाया गया, तो उसके अंदर चार फरिश्तों का जिक्र आता है जिन्होंने ज़मीन व आसमान को थामा हुआ है। यूँ समझ लें जैसा कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जिस तरह एक मुल्क चलाने के लिए निज़ाम है, इस तरह अल्लाह ताला का जो निज़ाम अल्लाह ताला जिस तरह बनाया है ये उसको अल्लाह ताला के हुक्म से चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम सब कुछ काम कर रहे हैं, हम वो तमाम ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, हम भी आपकी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो और क्या रिक्वायर्ड है आपको इससे। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, मुझे क्या है, मैं जानता हूँ वो जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला का कुछ और मकसूद था, वो मैंने इबादत वाले लेक्चर में इसको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि एक है इबादत वो कि जो जबरी है, जैसा मैंने बताया कि फरिश्ते जो है वो रोबोट्स की तरह मखलूक हैं जिन्होंने वो ड्यूटी परफॉर्म करते रहना जो उनको अपॉइंट किया गया है, समझने के लिए कि जिस तरह वो एक मूवी है टर्मिनेटर, जिसमें उसके अंदर टर्मिनेटर बना हुआ है, वो प्री प्रोग्राम था, उसका एक टास्क था, तो उस तरह उसका भी जो फरिश्ते हैं उनका भी एक टास्क है, वो परफॉर्म करते रहेंगे, कोई उनके लिए सुबह शाम का मसला नहीं है, कोई थकावट नहीं है उनके लिए, कोई और इशू नहीं है, तो वो परफॉर्म करते रहेंगे, प्रोग्रामिंग उनकी इस तरह भी है। अल्लाह ताला ये चाह रहे थे कि जो मैं मखलूक बनाऊँ वो उसको मैं अख्तियार दे दूँ, और वो अख्तियार होने के बावजूद उस इख्तियारात के साथ साथ उसकी अपनी डिज़ायर्स भी हैं इंसान के अपने, उसकी अपनी नापसंद भी होगी, उसकी पसंद भी होगी, उसकी नापसंद भी होगी, उसको कोई चीज़ अच्छी लगती है, उसको कोई चीज़ बुरी लगती है, उसको कोई चीज़ आसान लगती है, उसको मुश्किल लगती है, उसके बावजूद इख्तियारात होने के बावजूद मुझे बग़ैर देखे मेरी ही इबादत करे वो। इसके बारे में वो एक हदीस है, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि तुम जानते हो कि तमाम मखलूक में अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक है उसमें आजबुल ईमान किसका है। अजब हम कहते हैं, अजब किसे कहते हैं, स्ट्रेंज चीज़ को कहते हैं, अजीब सी चीज़ कहते हैं, क्या अजीब बात की है भाई आपने, इसके तो सर पैर ही नहीं है, हम उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में जो अजब लफ्ज़ है वो ज़रा नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, अरबी में ये होता है तो स्ट्रेंज ही, लेकिन ये पॉजिटिव मायनों में है कि कोई ऐसी सरप्राइजिंग अच्छी चीज़ जो खुश कर दे, अच्छा लगे। आजबुल ईमान अल्लाह ताला की तमाम मखलूक में सबसे आजबुल ईमान, सबसे खूबसूरत ईमान, सबसे अच्छा लगने वाला ईमान, सबसे डिफरेंट ईमान किसका है। साहबा ने अर्ज़ किया कि अल मलाइका, सबसे अच्छा ईमान जो है अल्लाह ताला के ऊपर वो फरिश्तों का है, कि ना कभी कोई नाफरमानी नहीं करते अल्लाह ताला, ये मैं वजाहत कर रहा हूँ, हदीस में सिर्फ अल मलाइका का जिक्र है, अल्लाह ताला की किसी किस्म की नाफरमानी नहीं करते। हम लोग खुद महावरतन लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एक बंदा बहुत ही नेक हो तो हम क्या कहते हैं, तो बिल्कुल फरिश्ता है, जिसके अंदर कोई खता का, कोई फॉल्ट का कोई चांस ही नहीं, जिसके अंदर हम उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लिए तो वो आइडियलिस्टिक सिचुएशन होती है कि फरिश्ते को हम समझते हैं कि सबसे अच्छा है। तो उन्होंने फरमाया कि फरिश्ते, तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, वो कैसे ईमान ना लाए अल्लाह ताला के ऊपर, वो तो मौजूद है अल्लाह ताला के पास, वो कैसे इनकार कर दें अल्लाह ताला का, तो मौजूद है। फिर साहबा ने एक और अटैम्प्ट में कहा कि अलम्बिया, जो पैगम्बर और नबी हैं, वो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबसे बेहतरीन ईमान आपका है, सबसे अच्छा ईमान, सबसे खुश करने वाला ईमान आपका है। तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि हम कैसे ईमान ना लाते, हम से मुराद पैगम्बर, हम कैसे ईमान ना लाते, हम पे तो वही आ रही है, मैं कैसे इनकार कर दूँ उसका, मेरे ऊपर तो वही आ रही है। फिर दूसरा, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मेराज की रात क्या कुछ नहीं देखा था, मेराज की रात में जन्नत देख ली, जहन्नम देख ली, फरिश्ते तो उनको देख लिया, हमारे लिए मिस्ट्री है सात आसमान के, रसूलल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब कुछ देख लिया था एक रात के अंदर, वो अफसर में पाया मेरे ऊपर तो वही आ रही है, मैं किस तरह इनकार कर दूँ उस चीज़ का। फिर उसके ऊपर और थोड़ा साहबा ने फरमाया कि अम्बिया के जो साथी होते हैं, जो साहबा होते हैं अम्बिया के, वो सबसे अच्छा ईमान उनका है, सबसे कामिल ईमान उनका है। फिर तो रसूल ने फरमाया कि तुम लोग किस तरह मेरे ऊपर ईमान ना लाते, मैं तुम लोगों के दरमियान मौजूद हूँ और कुरान नाजिल हो रहा है अभी, तुम कैसे ईमान ना लाते। फिर इसके ऊपर चौथी बार रसूल सल्लम ने खुद जवाब दिया कि اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سب سے خوبصورت ایمان، سب سے اچھا ایمان ان لوگوں کا ہوگا، ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا جو ہمارے بعد آئیں گے، جنہوں نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد، وحی کے دروازے بند ہونے کے بعد، صحابہ بھی نہیں اس وقت پیدا ہوں گے، ان کو صرف اور صرف اوراق ملیں گے، جس طرح یہ کاغذ ملے ہمیں، قرآن ہمیں کس شکل میں ملا ہے؟ کتابی شکل میں ملے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں ملی ہیں، کس طرح ملی ہیں؟ کتابوں کی شکل میں، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، حدیث کی مختلف کتابیں ہیں، ہمیں صرف صفحے ملے ہیں یہ، تو اس کے اوپر حضرت فرمایا کہ ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا کہ جن کو صرف اور صرف صفوں کے اوپر ان کو دین پہنچے گا ان تک، لیکن وہ اس پر بھی ایسا ایمان رکھیں گے جیسا ایمان لانے کا حق ہے، جیسا ایمان ہونا چاہیے، جیسا ایمان ہونا چاہیے وہ ویسا ایمان لائیں گے اس کے اوپر۔ تو یہ اس طرح کی جہاں تک جہاں پہ دوسری احادیث بھی ہیں جہاں پہ عذاب کا ذکر ہے، ہمیں اپنے اعمال کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، وہاں پہ اس طرح کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری والی حدیثیں بھی موجود ہیں، جس طرح ہم لوگ نہ رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ کچھ، ہمارے لیے تو سب کچھ جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی ڈیفائن کیا کہ سب سے اچھا ایمان اسی کا ہی ہوگا جس نے دیکھا بھی کچھ نہیں۔ ہم نے اسٹارٹ میں کیا بات کی تھی، متقین کون ہوتے ہیں، سورہ بقرہ اسٹارٹ کہاں پہ ہوئی تھی، جن کا ایمان ہوتا ہے غیب کے اوپر، ایمان لانا ہے اللہ کے اوپر، لیکن اللہ کو دیکھ نہیں سکتے آپ، اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں ہے، کیا کس طرح پروف کرے اللہ کو؟ ایمان لانا ہے جنت کے اوپر، جنت کا نیم ہے پتا، کہاں ہے جنت، کیا ان سات آسمانوں کے اندر ہی کہیں ہے یا اس سے بھی ہٹ کے کوئی چیز ہے؟ نو آئیڈیا۔ جہنم سے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچائیں آپ، لیکن جہنم ہم نے وہ بھی نہیں دیکھی، جہنم اس کے بارے میں صرف وہی ذکر ہے جو ہمیں قرآن و حدیث میں بتایا گیا۔ فرشتوں پر ایمان لانا ہے، یہ بھی ایمان ہے ہمارا کہ اس ٹائم کم سے کم اگر ہم لوگ بالفرض 15 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو 30 فرشتے تو موجود ہیں ہی ہیں، وہ ایک جو ہمارے اچھے اور برے اعمال لکھ رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے خالص اللہ کی رضا کے لیے، جس طرح یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے، نہ آپ لوگوں کو میں کچھ لا کے یہاں پہ کوئی چیز دے رہا ہوں دنیاوی چیز، نہ آپ لوگ مجھے لا کے کوئی چیز دے رہے ہیں، نہ میرا کوئی اس طرح فائدہ ہو رہا ہے، نہ آپ لوگوں کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے اس کے اندر۔ جہاں پہ خالص اللہ کی رضا کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں پہ رحمت کے فرشتے اس جگہ کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تک جا کے بات رپورٹ کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے فلانے 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 بندے جو ہے نا وہ وہاں پہ بیٹھ کے اور آپ کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ حدیث لمبی حدیث ہے، وہ پھر بعد میں کبھی اس کو دوبارہ ایکسپلین کروں گا۔ وہی ہم نے مان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، ہمیں دیکھا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم نے کسی کو دیکھا تو نہیں ہے، ہمارے جتنے ریلیٹیوز فوت ہوئے ہیں کسی نے آ کے بتایا تو نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد، کیا واقعہ ہوا تھا۔ تو یہ تمام چیزیں غائب ہیں، بالکل ہی غائب ہے یہ سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت ہے جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ کو، کہ انسان با اختیار ہو، میری اپنی بھی ایک پسند ہے، میرا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، میری اپنی کو انا بھی ہے، مجھے کسی وقت غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے اوپر میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو حاوی کر دوں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اپنا غصہ چھوڑ دوں، ٹھنڈا کر دوں، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں غصے میں آؤں، جن باتوں کے اوپر غصے میں آنا چاہیے وہاں پہ تو ہم لوگ بالکل ہی بڑے سافٹ ہارٹیڈ اور بڑے ہم لوگ بنے ہوتے ہیں، بغیرت بنے ہوتے ہیں ہم لوگ، جہاں پہ غصہ نہیں آنا چاہیے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ذات کے اوپر کبھی غصہ نہیں کیا کہ تم نے میرے ساتھ اس طرح کیا تھا یا فلانا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ جب بھی آیا وہ اسلام کی خاطر آیا تھا، غصہ اس سینس میں، یعنی کہ غصہ آنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی ناپسندیدہ بات ہوتی تھی تو صحابہ کو کس طرح پتہ لگتا تھا؟ ہاں جی، وہ کہتے ہیں چہرے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی وجہ سے چہرہ جو تھا وہ سرخ ہو جایا کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رگ تھی جو یہاں سے گزرا کرتی تھی وہ سوج جاتی تھی۔ جہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم نے دیکھو، اگر کچھ لوگ کبھی ہنستے ہیں یا غصے میں آتے ہیں تو ان کی ایک رگ جو ہوتی ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح چہرے مبارک سے صحابہ پہچان لیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات اچھی نہیں لگی، غصے میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ غصہ آنا ہی نہیں چاہیے، غصہ تب آنا چاہیے جب خلاف اسلام کوئی چیز ہو، اس پہ غصہ آنا چاہیے، جہاں پہ ہمیں آتا نہیں ہے غصہ۔ ہمیں کن باتوں میں غصہ آتا ہے؟ اپنی ذاتی باتوں کے اوپر غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ فلانے نے میرے ساتھ یہ کر دیا، اس نے مجھے یوں کہا، اس نے مجھے یوں دھکا دیا، اس نے میرے پیٹھ پیچھے اس طرح بات کی۔ یہ وہ سب باتیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو تھے وہ معاف کرنے والے تھے، हम तो बिल्कुल ऑपोजिट कर रहे हैं, सुन्नत का जो ऑपोजिट होना चाहिए हम तो वो कर रहे हैं। जिन बातों पे रसूल सल्लम ने हमेशा माफ़ किया है हम उन पे गुस्सा कर रहे होते हैं। आपको रसूल सल्लम की कभी कोई ऐसी हदीस नहीं मिलेगी कि खाना मज़े का नहीं था, देर से खाना मिला तो गुस्सा किया हो उन्होंने, या किसी और बात के ऊपर कि किसी बंदे ने आके आपसे सल्लम से किसी और तरीके से जाना बात कर दी हो उस पर गुस्सा हुए हो, इसमें से किसी बात के ऊपर जरा रसूल सल्लम गुस्सा नहीं हुए थे। तो अल्लाह ताला का नहीं, जो जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं समझ के इसकी हिकमत क्या है। उसके बाद अल्लाह ताला ने अब आगे बात जिक्र नहीं किया, अगली बात क्या फरमा रहे हैं, वअल्लमा आदम अलअस्मा कुल्ला, अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। वो जिक्र ही नहीं आया कि आदम को पैदा किस तरह किया अल्लाह ताला ने, मिट्टी से पैदा किया, आगे जाके कुरान में जिक्र आएगा। ये जो 7 दफ़ा मैंने बताया कि आया है इसमें आगे जाके जिक्र आता है, इस यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं है कि मिट्टी से पैदा किया। लेकिन वो भी जो जिक्र आता है बस वो हो गया, मिट्टी से पैदा किया, सूखे हुए गारे से पैदा किया, मुख्तलिफ नाम आएंगे लेकिन उनकी डिटेल नहीं कि अल्लाह ताला ने क्रिएशन से पैदा किया या एवोल्यूशन से पैदा किया अल्लाह ताला ने, क्योंकि इसका ताल्लुक हदायत से ताल्लुक नहीं है। इसका हदायत के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अल्लाह रब है हमारा, अल्लाह ने पैदा किया। अब एग्जैक्टली वो माइन्यूट डिटेल्स क्या है कि क्या एवोल्यूशन के जरिए अल्लाह ताला ने कदम पर कदम इर्तका के जरिए अल्लाह ताला ने पैदा किया तदरीजन, या अल्लाह ताला ने एकदम से पैदा किया, उसका जिक्र नहीं अल्लाह ताला का। एकदम से यहाँ पे आ गया कि अल्लाह ताला ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, तो इसका मतलब यह है कि वो बहस उतनी इम्पॉर्टेंट भी नहीं है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया किस तरह था, इन दोनों में से क्या फॉर्म भी पैदा किया था। अलबत्ता जो बातें हैं जिक्र हुई हुई हैं उनके अंदर चंद बातें मैं मोटी मोटी बता देता हूँ। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर आगे जाके फरमाया है फरिश्तों से, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि जब मैं आदम को, आदम की क्रिएशन को मैं कंप्लीट कर दूंगा, मुकम्मल कर दूंगा, और इसमें मैं अपनी रूह में से फूंक दूंगा, पनफक्तु फीही मिन रूही, मैं अपनी रूह में से जब मैं इसे फूंक दूंगा इसमें से, तो फिर तुम उसके बाद सजदे में गिर पड़ना। आदम की जो तख्लीक है वो, या इंसान की जो तख्लीक है वो इस तरह नहीं है कि जिस तरह कोई जानवर होता है तो हम उससे बहुत ज़्यादा हायर इवॉल्व हैं हम लोग। जिस तरह एक बंदर है बहुत ज़्यादा डिग्री में हम लोग जो है ना चीज़ें समझते हैं, हमारी अकल उससे बहुत ज़्यादा है, हमारी ताकत ज़्यादा है कुछ है हमारा। इंसान को सजदा करने का तब कहा था अल्लाह ताला ने जब रूह भी फूंक दी थी। ये वाहिद मखलूक है जिसके अंदर रूह भी मौजूद है, तो ये मिक्सचर है, ये इसके अंदर इसकी एक बॉडी भी है और इसके अंदर रूह भी है, ये इन दोनों का एक मिक्सचर है, ये बहुत डिफरेंट मखलूक है इसकी। इसके अंदर रूह भी है और ये जो जिस्म है उसका, उसके अंदर ये रूह फूंकी गई है तब ये आदम वजूद में आया। ऐसा जो ये रूह फूंकी अल्लाह ताला ने इसके अंदर, जैसा सही मुस्लिम की हदीस है, खलक अल्लाह आदम अला सूरत ही, अल्लाह ने आदम को अपनी सूरत में, अपनी शक्ल में पैदा किया। अल्लाह ताला ने आदम को अपनी सूरत, अपनी शक्ल में पैदा किया। एग्जैक्टली यही अल्फाज बाइबल में भी लिखे हुए हैं, गॉड क्रिएटेड एडम ऑन हिज ओन इमेज, एग्जैक्टली यही अल्फाज बाइबल में लिखे हुए हैं। इसे ये नौजुबिल्ला ये वाला मतलब नहीं है कि शक्ल का मतलब ये कि ये फिजिकल फिजिकल अपेयरेंस की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है अल्लाह ताला की जो सिफात है, अल्लाह ताला की 99 सिफात है, अल्लाह ताला रहीम है, अल्लाह ताला गफूर है, अल्लाह ताला अलीम है, जानता है अल्लाह ताला, अल्लाह ताला बसीर है, देखता है अल्लाह ताला, अल्लाह ताला क्या है, समी है, सुनने वाला है अल्लाह ताला, अल्लाह ताला जो है वो गुस्सा भी होता है, अल्लाह ताला नाराज़ भी होते हैं, अल्लाह ताला क्या है, खालिक भी है अल्लाह ताला, अल्लाह ताला बारी भी है। अल्लाह ताला के जो नाम अस्मा उस्मा के अंदर आए हुए हैं ये उसकी एक झलक है जो इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने डाल दिया, एक रिफ्लेक्शन है उसकी कि इंसान के अंदर भी वो चीज़ें डाली हैं कि इंसान भी रहम करता है, इंसान भी गुस्सा होता है, इंसान जो है वो भी तख्लीक करता है। कोई और हैवान, कोई और जानवर, कोई और मखलूक, कोई और चीज़ तख्लीक कर सकते हैं सवाए वो कि जो जो इनहेरिट है उनके अंदर। मिसाल के तौर पर चिड़िया जो है वो अगर घोंसला बनाती है तो वो हमेशा घोंसला ही बनाती आएगी हमेशा से, उसी तरह तिनकों से। क्रिएटिविटी, तख्लीक के अंदर क्रिएटिव होना, ये इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने डाला है कि वो जो है, ये नहीं कि एक तरह से हमेशा से घर हम इंसान बनाते आ रहे थे। आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर एक पूरी फील्ड है, आर्किटेक्चर के अंदर तो डिग्रीज होती हैं, मास्टर्स होते हैं, पीएचडी की जाती है। आर्किटेक्ट्स को ये कि इसके कोई डिज़ाइन बना के दें, कोई और डिज़ाइन बना के दें, उसके अंदर और क्रिएटिविटी होती है। ये अल्लाह ताला ने चीज़ पैदा की है, रहम करना, गुस्से होना किसी के ऊपर, किसी को माफ़ कर देना, ये हैवानों में तो नहीं चीज़ होती ना ये वाली की माफ हो गया कुछ, इंसानों के अंदर अल्लाह ताला की ही उन चीज़ों की एक झलक है। अल्लाह ताला सुनता है, इंसान भी सुनता है उसी तरह ही, अल्लाह ताला देखता है, इंसान भी देखता है, लेकिन इंसान की हर चीज़ जो है वो तीन चीज़ें उसमें आप ऐड करके अल्लाह ताला की सिफात के साथ इंसान को समझ सकते हैं। अल्लाह ताला की हर सिफ जो है वो इनफाइनाइट है, लिमिटलेस है। इंसान की हर सिफ जो है वो बहुत लिमिटेड है, फाइनाइट है, बहुत थोड़ी महदूद है। इल्म बहुत महदूद है, ज़्यादा बताएंगे तो बंदा भूल जाएगा बातें। देखना हमारी आई साइट वो महदूद है, देख जरूर सकते हैं लेकिन महदूद है। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बसीरत देखना और एक है बसारत, मतलब कि एक चीज़ ये है कि देखना और एक है कि देख के को बात समझ लेना, ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। वो इंसानों के अंदर है, मौजूद है, जानवर भी देख सकते हैं, लेकिन जो विजन जिसे कहते हैं, विजन जो है वो इंसानों के अंदर है, जानवरों के अंदर नहीं है। अल्लाह ताला की जो हर सिफत है वो इंसान अपने ऊपर कर सकता है कि फाइनाइट और सॉरी इनफाइनाइट फाइनाइट। फिर हमारी हर चीज़ जो है वो अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, हम ओन नहीं करते थे उसे, अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ से अल्लाह ताला वापस भी ले लेंगे। अल्लाह ताला ने दिया था, अल्लाह ताला ओनर है उसका, हमें सिर्फ दिया अल्लाह ताला ने, जबकि अल्लाह ताला की हर सिफत जो है वो अल्लाह ताला की अपनी है। फिर उसके अलावा हमारी जितनी भी सिफात है वो हमारी हमेशा से नहीं थी, एक टाइम था जब नहीं थी, एक टाइम था जब मैं था ही नहीं सिरे से, मेरा वजूद ही नहीं था, फिर एक टाइम था कि मेरे वजूद तो हुआ लेकिन ये क्वालिटीज़ नहीं थी, अभी मेमोरी में सेव करने की सलाहियत नहीं थी, ज़्यादा दूर तक देखने की सलाहियत नहीं थी, फिर ये सलाहियतें मिलना शुरू हो गई, फिर एक टाइम आएगा ये सलाहियतें जाना शुरू हो जाएंगी, नज़र कम आएगा, सुनाई नहीं देगा सही तरह से। तो ये हमारी हर जो क्वालिटी है वो हमेशा से नहीं थी, जबकि अल्लाह ताला की हर सिफ़त हर चीज़ जो है वो हमेशा से है। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला नौज़ुबिल्लाह तजर्बे से सीखते हैं या करके देखते हैं क्या होता है, हिट एंड ट्राई एडॉक बेसिस पे, नौज़ुबिल्लाह ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये हम लोगों के ऊपर ये लिमिटेशन है ये वाली, कि अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी सूरत पे बनाया, तो ये जो अल्लाह ताला के जो अल्लाह ताला की सिफात है उनका अक्स एक रिफ्लेक्शन है एक थोड़ी सी हद तक इंसान के अंदर, और उसी तरह इंसान जो है उसको करता है। और इलामा इकबाल का जो पूरा जो फ़लसफ़ा है खुदी का, वो बेसिकली वो यही है, घूम फिर के यही है कि अल्लाह ताला ने जो इंसान के अंदर, वो फ़लसफे के टर्म्स में चले जाएंगे कि अल्लाह ताला की जो इनफाइनाइट ईगो है उससे अल्लाह ताला ने एक फाइनाइट ईगो एक खुदी डाल दी उसके अंदर, इंसान के अंदर, जिसके अंदर यही सारी सलाहियतें होती हैं। और उनकी खुदी का जो फ़लसफा है उसके अंदर ये है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जिस तरह ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने ख़जाने छुपा के रखे हुए हैं, अब एक पहाड़ जिनकी जिन पहाड़ों के ऊपर से हमारे जो बड़े लोग बुज़ुर्ग हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो सारे गुजरते आ रहे थे, वो कितने सालों बाद जाके पता लगा इस पहाड़ के नीचे तो गोल्ड माइंस हैं, सॉल्ट माइंस हैं इसके अंदर, ये खेड़ा के अंदर बाद जाके पता लगा तो सॉल्ट है इसके अंदर। अरब के अंदर ना कभी पर्शियन ने अटैक किया था ना कभी रोमन एम्पायर ने अटैक किया था, कि ये तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, क्या रखा है इसके अंदर। अब वही सारा मिडिल ईस्ट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट जगह बना हुआ है तेल की वजह से। तो ये खजाने जितना छुपे हुए हैं, इस तरह इलामा इकबाल का जो खुदी का फलसफा की चंद मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, वो ये है कि इंसान के अंदर सलाहियतें अल्लाह ताला छुपा के रखी हुई हैं, वो उनको खुद उनको पहचाने, उनको अनलीश करे, उनको वो अपॉर्चुनिटी दे, वो तो वो खुद बखुद जरा वो चीज़ें सलाहियतें बढ़ेंगी उसकी। सब समझाने के लिए मैं एक बात बता रहा हूँ, अभी कहा जाए कि चले यहाँ से हम दौड़ लगाते हैं वो उधर ताली मोड़ी चौक है वहाँ तक, अभी भागना शुरू गली ख़त्म नहीं होगी तो सांस फूलो आगा फु, 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 बस बहुत हो गया, अभी पसीने आ गए और तबीयत ख़राब हो रही है, पानी लाओ, हालत हो गई मेरी। इसको जाहिर बात है अभी आप कहेंगे अभी तो सलाहियत थी नहीं आपके अंदर, आप भागे आप थक थूक के जरा रह गए, अच्छा इसको कल दोबारा करके देख लें, परसों करें, दोबारा करें, हफ्ते तक, दो हफ्ते तक, महीने तक करके देख लें, आपको ये टाइम और बड़े आराम से आ जाएगा कि आप यहाँ से वहाँ तक भागेंगे और आप वन गो में पहुँच जाएंगे। ज़्यादा आगे जाके ये होगा ऐसे ऐसा करके होगा कि आप थकेंगे भी नहीं, इतना सांस भी नहीं चढ़ा होगा आपको, आप कहेंगे मैं और भी भाग सकता हूँ। ये क्या है, अपनी सलाहियतों को अनलीज कर रहे हैं, उनको खोल रहे हैं, उन्हें हम लोग अपनी सलाहियत है उसको खोल रहे हैं। एक बच्चा जिसको कभी स्कूल में दाखिल ही ना कराएं उसके अंदर वो सलाहियत ही नहीं पैदा होगी वो वाली, उसी बच्चे को अगर स्कूल में दाखिल करवाते हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ाएं, उसको क्या पता उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ अल्लाह ताला डाली हों जो वो बाद में जाके अनवेल हों, ओपन हुआ वो बाद में जाके। तो अल्लाह ताला ने ये तमाम चीज़ें जो हैं छुपा के रखी हुई हैं इंसान के अंदर। तो वही एक शेर भी उनका है, अपनी खुद ही पहचान ओ गाफिल इंसान। अल्लाह ताला ने इंसान को जब बनाया है ना तो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारियाँ डाली हैं अल्लाह ताला ने। कहीं इस टाइम हमारे इस इलाके में मोहल्ले के अंदर कहीं किसी के साथ जुल्म हो रहा होगा, किसी का ज़्यादती हो रही हो, कहीं कोई चोरी होती है या किसी को कोई फिजिकली मारा जाता है या कॉमन लेवल पर कोई ज़्यादती होती है, इंडिविजुअल लेवल पर ज़्यादती होती है। अल्लाह ताला ने डिवाइन इंटरवेंशन नहीं करनी, अल्लाह ताला ने आके बीच में रोकना नहीं है, हाथ नहीं उसका रोकना, ना ही फरिश्तों ने आके उसका हाथ रोकना है जो जुल्म कर रहा है। किसी के साथ ज्यादती अगर होती है तो अल्लाह ताला ने आके उसको नहीं बचाना। समझाने के लिए बता रहा हूँ, अभी आपने खबर सुनी होगी चंद दिन पहले जो आई थी, जो हॉस्पिटल में जो हुआ था, जो दो बच्चे जो थे और वो चूहे जो थे वो बाइट कर गए थे उन्हें। अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ज़रा सा भी वो बंदा जिसके दिल में एक कतरा भी रहम का होगा वो इस खबर को देख के या सुन के या पढ़ के जो है वो अंदर से कांप ना उठाओ। अल्लाह ताला तो ज़्यादा रहम करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने नहीं इसमें रोक, अल्लाह ताला ने इंटरफेरेंस नहीं करनी। अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे डाल दिया है, हमारे ऊपर डाला है कि तुमने ज़मीन में इंसाफ कायम करना है, तुमने, मैंने तुम्हें हिदायत दे दी है, मैं तुम्हें समझा दिया, तुमने अब ज़मीन के अंदर इंसाफ कायम करना है, तुमने जो है वो जुल्म को रोकना है, कायमम बिल किस्त, तुमने जो है वो किस्त के साथ जाना मामला करना है, अदल तुमने कायम करना है ज़मीन के ऊपर। तो ये हमारी जिम्मेदारी है यारी, हम अगर गाफिल हैं, हम अगर नहीं इस चीज़ को कर रहे, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी क्या डाली कि ये मेरा दीन है, ये मेरा किताब है, तुमने इसको नाफिज करना है और इंसाफ के साथ कायम करना है, इसे नॉन मुस्लिम कोई जुल्म नहीं करना किसी के साथ, अपने ज़ाती किसी से बदले नहीं लेने, अदल के साथ तुमने काम करना है। ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाली थी और अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुम्हारे रिस्क की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हें रिस्क मैं फराम करूंगा, इन्नल्लाह हुवर रज़ाक वज़ुल कुव्वतुल मतीन, बल्कि मैं रज़ाक हूँ, मैं तुम्हें फराम करूंगा ये चीज़ें और मैं ज़बरदस्त कुव्वत वाला हूँ। अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी उठाई है, जरिया हमने बनाना है, उसका सोर्स हमने बनाना है, तो फिर रिस्क अल्लाह ताला हमें देंगे, सोर्स मैंने बनाना है। मिसाल के तौर पर मैं कोई जॉब करूँ, मैं कोई बिजनेस करूँ, कोई रेंट पे कोई चीज़ मेरी हो, मैं उसको रेंट पे लगा दूँ, कोई लेक्चर दूँ जाके, वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने उसका क्या करना है, सोर्स क्या बनाना है। लेकिन जो रिस्क देना ये अल्लाह ताला के ज़िम्मे है, हमारे ज़िम्मे था कायम करना इंसाफ अदल को और इस्लाम को कायम करना, और रिस्क अल्लाह ताला की जिम्मेदारी थी। हमने क्या किया है, जो अल्लाह ताला के ज़िम्मे था हम वो करना शुरू हो गए हैं, कैरियर बना रहे हैं, पूरी पूरी लाइफ हम उसी के ऊपर डेडिकेट करते हैं, उसी के ख्वाब देखते हैं, बचपन से लेके बड़े होने तक पेरेंट्स 20 साल 22 साल हमें इसी की ट्रेनिंग देते रहते हैं। ये हम स्कूल जा रहे होते हैं, मकसद क्या होता है, अच्छा कमाएगा, अच्छा इंसान बनेगा, ये बस ये मकसद होता है हमारा पीछे। अगर इस्लाम भी फैलाना है तो करना ये पड़ेगा, तभी स्कूलिंग ही करानी है बच्चों को। लेकिन नीयत हमारी क्या होती है, हमारी नीयत होती है कि अच्छा कमाएगा ये, जितना अच्छा पढ़ेगा, जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगा, जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगा उतनी अच्छी जॉब मिलेगी, जितनी अच्छी जॉब मिलेगी उतना अच्छा पैसा। तो जो अल्लाह के ज़िम्मे था वो हमने अपने ज़िम्मे लेने की कोशिश कर रहे हैं और मार खा रहे हैं, बरकत ही नहीं हमारे माल के अंदर। और जो हमारे ज़िम्मे था वो हम अल्लाह ताला के ऊपर डाल देते हैं, या अल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएँ, या अल्लाह फ़लानी चीज़ हो जाए, या अल्लाह जुल्म ख़त्म हो, या अल्लाह यहूद नसारा को बर्बाद करें, या अल्लाह फ़लानी चीज़ हो, या अल्लाह खुशहाली आए, या अल्लाह ये हो, या अल्लाह वो इस्लाम नाफिज़ हो, ये हो, ये भाई ये हमारे करने का काम था। जो अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे डाला था हमने अल्लाह ताला के ऊपर फेंक रहे हैं दुआएँ मांग के बाद, अल्लाह ये करें आपस करें, अल्लाह ताला इंसाफ कायम करें, किसी तरह से इस्लाम पाकिस्तान को बचा लें, ये कर लें। अल्लाह ताला ने नहीं बचाना पाकिस्तान को अगर हम नहीं बचाएंगे, अल्लाह ताला की मदद तब आएगी जब हम कुछ कर रहे होंगे, तब अल्लाह ताला की मदद आएगी। कहीं अगर इंसाफ नहीं मिल रहा हमने ठीक करना है, ये नहीं कि या क्या मुसीबत है, सब जगह गंद डाला हुआ है, लोगों ने जिसका दिल चाह रहा है उधर थूक देता है, नालियों के अंदर लफाफे फेंके हुए हैं, ये मसला है, ट्रैफिक का इतना मसला है, ये है वो, बिजली नहीं आ रही, गैस नहीं आ रही, फलाना नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, और भाई हमने इस मुल्क को ठीक करना है। ये नहीं कि हम यहाँ से जाना बस वीज़ा लगाएं और बस मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर में जाए मेरा मुल्क, मेरा रिश्तेदार तमाम जाए बाहर में, बस मैं और मेरी इमीडिएट फैमिली बाहर है, बाकी क्या हकूक लिबाद और क्या क्या है क्या नहीं, बस ठीक है कुछ भी नहीं। साल में एक चक्कर लगा के देख लिया करेंगे, ज़कात के पैसे भेज दिया करेंगे, बाकी हमें क्या लगे कि पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बेसिकली आप जो पूछ रहे हैं ना वो ये खिलाफत ये मतलब है, हमने हमारे ये अल्लाह ताला ने जिम्मे डाला हुआ है ये सब चीज़ें। तो वो हाँ, बल्कि एक और बात ये बता दूँ, ये जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि खिलाफत, जरा खिलाफत इस्लामी और खिलाफत कायम करनी है, वो खिलाफत कोई अलग से अनहोनी चीज़ नहीं है। हर वो गवर्नमेंट वो खिलाफत ही होगी जो अल्लाह ताला के दीन के ताबे होगी, बस वो खिलाफत होगी, चाहे वो बादशाह थी, दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह थे, किंग थे, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो जैसी मर्जी गवर्नमेंट हो, वो कन्फेडरल हो या फेडरेशन हो, जैसी मर्जी हो, वो खिलाफत ही होगी जो अल्लाह ताला की दीन के ताबे होगी। बस दीन के ताबे होना ये खिलाफत है, कोई अलग से होनी चीज़ नहीं है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया वा अल्लमा, और सिखा दिया आदमा, आदम को अस्मा, नाम, कुल्लहा, तमाम के तमाम नाम, और अल्लाह ने आदम को सिखा दिया तमाम चीज़ों के नाम। जो मुफस्सरीन ने, पुराने मुफस्सरीन ने जो बातें बयान की हैं, हमें उनमें उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारे मुफस्सरीन हैं उन्होंने इस तरह की बातें लिखी हुई हैं कि आदम को अल्लाह ताला ने पहले तमाम चीज़ों के नाम सिखाए, ये जिब्राइल है, ये मिकाइल है, फिर जाके उनको कहा कि ये बताओ इन्हें, ये वो बात नहीं है। इसका असल मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ने आदम को पोटेंशियली हर चीज़ का इल्म दे दिया, उस पोटेंशियल को अनलीश करना है, उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करना है सिर्फ। अस्मा कुल्लाहा, ये इंसान की नेचर है कि जब भी कोई एक नई चीज़ बनती है या एक नई चीज़ मिलती है तो इंसान उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानने की कोशिश करता है कि ये क्या चीज़ है, फिर उन प्रॉपर्टीज़ को जानने के बाद उसका एक नाम सजेस्ट किया जाता है कि इसका क्या नाम सजेस्ट होगा इसका। ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे सिम्बॉलिकली इसको मेंशन किया हुआ है, इसी इंसान के अंदर जो क्वालिटी है। कोई एक बच्चा भी होगा, आप उसको ना भी सिखाएं चीज़ें, उसको नाम ना भी सिखाएं, वो हमेशा नाम खुद ही रख लेगा, उस चीज़ों के अपने खिलौने के खुद ही नाम रख लेगा वो। उसने खाना खाना है, वो खुद ही एक नाम रख के आपको कहेगा कि ये मैंने मैंने खाना है, जो भी नाम, अगर आप ना भी सिखाएं उसे कि ये पानी है, ये खाना है, वो अपने नाम बना लेगा। जैसा इब्राहिम जो है खाने को माना बोलता था, माना हमने तो नहीं सिखाया, खुद ही उसने बना लिया माना। ये ना इंसान के अंदर ये क्वालिटी है, तो बच्चे के अंदर भी यही क्वालिटी है, बड़े से बड़े बंदे के अंदर भी यही क्वालिटी होती है कि आपने कोई बड़ी से बड़ी चीज़ भी कोई बना ली, आप उसको एक नाम दे देते हैं, सिम्बलाइज कर लेते हैं उसको किसी ना किसी चीज़ के साथ। कोई साइंटिस्ट को नई चीज़ पता लग गई, उन्होंने एक कहीं डिस्कवरी की, उन्होंने देखा कैसे ये कोई फलाना स्टोन है, ये नया निकला है, उन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज़ मैच करके देखी, प्रॉपर्टीज़ अगर किसी और चीज़ के साथ मैच हो गई तो कह दिया कि अच्छा ये तो वही चीज़ ही है। कोई नई चीज़ आ गई किसी और प्रॉपर्टी के साथ मैच नहीं हो रही है, एज इट इज़ कह देंगे ये फलानी, अब ये नई दरियाफ्त है भैया, ये नई चीज़ निकल आई है, कोई इसका ये नाम रखते हैं हम लोग। कोई मोबाइल फ़ोन नया आ रहा है, उसका एक नया नाम होगा उसका। तो ये अल्लाह ताला ने एक सिम्बॉलिक चीज़ रखी हुई है यहाँ पे। इंसानों ने ये जो सितारों के नाम है ये किस तरह रखे हैं, खुद ही रखे हैं। इसको सन कहना है हमने, इसको हमने मरकरी कहना है, ये फिर वीनस है, अर्थ है, मार्स है, ये खुद ही नाम रखे हुए हैं। सोलर सिस्टम इसका नाम है, मिल्की वे ये नाम रख लिया, ये इंसानों ने खुद ही नाम रखे हैं इन चीज़ों के। फिर अल्लाह ताला ने जिस तरीके से ज़मीन और आसमान को बनाया हुआ, जिस तरह अल्लाह ताला चला रहे हैं, इंसान ने जिस तरह जिस तरह उसको अंडरस्टैंड करता रहा, उसको उसने सिम्बलाइज कर दिया। ये मैथ्स के होते हैं 1, 2, 3, 4, ये सिम्बल, ये हमने सिम्बॉलिक चीज़ें बनाई हुई हैं, 1+1, ये सिम्बॉलिक रूल्स बनाए हुए हैं हमने। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ने आदम को पोटेंशियली तमाम चीज़ों का जो नॉलेज था वो पोटेंशियली दे दिया, वो क्वालिटी डाल दी कि जिसके थ्रू सेंसेस डाल दी, 5 सेंसेस और एक छठी सेंस जो होती है 6th सेंस, कि इंसान को जो है ना, ना तो देखा इंसान ने, ना फील किया, ना सूंघा, ना सुना उसके बारे में, उनमें से तो कोई चीज़ नहीं है, ना टच करके देखा उसने, लेकिन एक उसके और 6th सेंस के थ्रू उसको बात पता लग गई, उसका विज्ञान हो गया उसे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कि ये अल्लाह आदम की तख्लीक में शामिल है ये इल्म। सुम्मा फिर अरज़हुम, फिर बुलाया, पेश किया, प्रेजेंट किया हुम उन्हें अलल मलाइका थे, फरिश्तों के आगे। अल्लाह ताला ने फिर आदम को जब तख्लीक कर लिया, ये चीज़ क्वालिटी डाल दी, फिर फरिश्तों के आगे पेश किया, प्रेजेंट किया फरिश्तों के आगे। फ़काला, बस कहा अल्लाह ने, अम बेऊनी, खबर दो, बताओ मुझे। ये जो लफ्ज़ है अम्बे ऊनी, अम्बे ये नबी इसी से बना है, नबी कहते हैं खबर देने वाला, गैब की खबर देने वाला। तो अल्लाह ताला कहते हैं बताओ मुझे, टेल मी बे असमाए हा उलाए, इन चीज़ों के नाम बताओ, किन चीज़ों के नाम, इसमें कहीं कुरान में जिक्र नहीं है ना हदीस में जिक्र है। कोई चीज़ होगी, कुछ चीज़ें होंगी अल्लाह ताला ने फरिश्तों इंसान को कंपेयर करने के लिए और अपनी बात साबित करने के लिए कहा कि बताओ इन चीज़ों के नाम, इन चीज़ों के बारे में मुझे बताओ ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा मैंने बताया फरिश्ते तो रोबोटिक चीज़ें प्रोग्राम्ड है, जो नॉलेज जो चीज़ उनको दे दी गई है वो उसी तरह ही बस परफॉर्म करते हैं। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे बताओ, अगर तुम्हारा दावा सच्चा है कि मुझे एक और खलीफा बनाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना एक नायब बनाने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे अंदर वो तमाम चीज़ें हैं, तो फिर प्रूव करो, बताओ इन चीज़ों के नाम बताओ, बताओ क्या क्या चीज़ें हैं। फरिश्तों ने अगर से क्या कहा, कालू, फरिश्तों ने कहा सुभानक पाक है अल्लाह तू, ला इल्म लना, नहीं है हमारे पास भी कोई इल्म, इल्ला मा अल्लमतना, सिवाय उसके जो आपने हमें सिखा दिया है, सिवाय जो आपने हमें बताया सिखाया उसके अलावा तो हम नहीं जानते ये क्या चीज़ें हैं, हम किस तरह बताएं इसके बारे में। अल्लाह पाक है, ये मोहताजी हमें है आपको नहीं है। इन नका, बेशक आप, अंता आप, यू अल अलीम अल हकीम, इन नका अंतल अलीम अल हकीम, अलीम भी इल्म हो गया और हकीम हिकमत विजडम। लेकिन जैसा मैंने अभी शुरू में बताया था कि अल्लाह ताला की तमाम क्वालिटीज़ जो हैं वो इनफाइनाइट है, तो ये जो लफ्ज़ होती हैं जिनके जो जिनका वेटेज इस तरह होती है, अलीम हकीम बसीर रहीम, जितने भी लफ्ज़ होते हैं जिनके एंड में या सेकंड लास्ट वर्ड या आता है फ़ईल के वजन में, जितने भी होते हैं इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर तसलसल होता है। अलीम का क्या मतलब होगा, आलिम कहते हैं हम किसी आम बंदे को भी कहते हैं आलिम है, इसके पास ज़्यादा इल्म आ गया, इल्म वाला है, इसको आलिम कहेंगे, अल्लामा भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है। अलीम का मतलब ये है कि ऐसा इल्म जिसमें कोई कमी नहीं आ रही, हमारा इल्म में कमी जैसे कई दफ़ा बता चुका आ जाती है, भूल जाते हैं बातें, क्या बात हुई थी नहीं याद रहा मुझे भूल गया, पेपर में तो तक तो बड़ा अच्छा आता बाद में भूल गया, अभी मैं जहाँ पढ़ाने जाता हूँ वहाँ पर मुझे सब स्टूडेंट्स के नाम याद हैं, सब स्टूडेंट को मेरे नाम याद होंगे, मेरा नाम याद होगा, अब जिनको साल दो तीन साल गुजर जाएंगे फिर मैं नाम भूलना शुरू हो जाऊँगा कि वो क्या क्या नाम थे उनके क्या था, तो हम लोग भूल जाते हैं। अल्लाह ताला का ऐसा इल्म है जो कभी ख़त्म नहीं होगा, फिर हकीम ऐसी हिकमत जिसमें कभी नक्स नहीं आएगा, जैसे मिसाल के तौर पर मेडिकल टर्म्स के अंदर ये हिकमत है कि ये खाने से फ़ायदा होता है, वो बाद में पता लगा नहीं ये तो नुकसानदेह चीज़ थी। अल्लाह ताला का जो इल्म और हिकमत है वो ना इल्म में कमी आएगी ना हिकमत में कोई कमी है। फिर अल्लाह ताला ने कहा काला, कहा अल्लाह ने या आदमो ए आदम अम बे हम, बताओ अब तुम उन्हें पे असमाए हिम, इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों के नाम बताओ, इन चीज़ों के बारे में ज़रा उनको फरिश्तों को समझाओ तुम। तो आदम ने अपनी जो अल्लाह ताला ने क्वालिटी डाली थी कि इंटेलिजेंस की जो क्वालिटी डाली थी, जिसको कंप्यूटर साइंस के अंदर बड़ा हार्नेस करने की कोशिश की जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने की कोशिश की जाती है प्रोग्राम्स के अंदर, कि किस तरह से हम वही चीज़ बना लें जो हमारे अंदर है, जो क्वालिटी हमारे अंदर मौजूद है हम इस क्वालिटी को कंप्यूटर्स में डालते हैं किसी तरह से। तो ऑफकोर्स वो चीज़ तो कहीं नज़दीक भी नहीं है उसके अभी तक बात। तो आदम को अल्लाह ताला ने जो क्वालिटी दी थी इंटेलिजेंस की, उन्होंने जब इसके ज़रिए से फलम्मा अम्बा हम बे असमाएँ, आदम ने बता दिया उन्हें फरिश्तों को कि हाँ ये चीज़ है, ये ऐसी चीज़ है, ये वैसी चीज़ है, ये फ़लाना है, ये फ़लाना है। तो फिर काला, अल्लाह ने कहा अलम, क्या नहीं अकुल लकुम, तुमसे कह दिया था मैंने, इन्नी बेशक मैं आलम जानता हूँ, गैब छुपी हुई बात को, असमावात वल अर्ज, ज़मीन व आसमान में जो तुम्हारे लिए बातें छुपी हुई हैं उन सब को मैं जानता हूँ। ये अल्लाह ताला के लिए गैब कोई चीज़ नहीं है, गैब हमारे लिए है और बाकी तमाम मखलूक के लिए गैब वाली बातें हैं, अल्लाह ताला के लिए हर चीज़ हाजिर है। तो जो तुम्हारे लिए जो कुछ भी गैब में चीज़ें हैं ज़मीन और आसमान में, मैं उनमें से हर बात को जानता हूँ। वह आलम, और मैं ये भी जानता हूँ, माँ तुम दूना, जो तुम बयान करते हो, जो तुम कहते हो, तुमने कहा कि आदम को क्यों बनाना है, हम तस्बीह बयान कर रहे हैं, जो तुमने बयान किया मैं वो भी जानता हूँ। वमा कुंतुम तक्तुमून, और वो भी जानता हूँ जिसको तुम छुपा रहे होते हो, मैं वो भी जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि जब तक आप में से कोई बोलेगा नहीं, मेरे बारे में राय देगा नहीं, बेशक मेरे पीठ पीछे राय दें किसी और को, तब तक पता नहीं लगेगा कि आपके दिल में क्या है मेरे बारे में। जब तक मैं आपके बारे में किसी आपको खुद या किसी और के आगे जाके आपका जिक्र नहीं करूँगा, तब तक किस तरह पता लगेगा कि मेरे दिल में आपके लिए क्या है। अल्लाह ताला को इसकी मोहताजी नहीं, अल्लाह ताला कह रहे हैं जो तुम छुपाते हो मैं उसको भी जानता हूँ, जो तुम जाहिर करते हो मैं उसको भी जानता हूँ, और अगर जाहिर कुछ और कर रहे हो छुपा कुछ और रहे हो तो वो भी जानता हूँ। ये क्लैश जो होगा, ये कन्फ्लिक्ट होगा, मैं इसको भी जानता हूँ। सूरह रात की मैंने आयत बताई थी आपको कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था कि अल्लाह ताला कहते हैं कि सवा उन बराबर है मेरे लिए कि तुम दिन के रोशनी में चलो फिरो या रात के अंधेरे में तारीकी में कहीं छुप जाओ, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। मुझे रोशनी की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हें देखूं, मेरे लिए बराबर है कि चाहे तुम पुकार पुकार के चिल्ला चिल्ला के कहो, आजकल हम कहेंगे लाउड स्पीकर के ऊपर कहो या इंटरनेट के ऊपर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर, चिल्ला चिल्ला के कोई बात कहो या बिल्कुल अपने अंदर मख्फी रखो बात को, मेरे लिए दोनों चीज़ें बराबर हैं। इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सुभानक अल्लाह व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।